ये आकाशवाणी है। अब आप अरुण कुमार से समाचार सुनिए। भारत और थाईलैंड ने आज सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, हस्तशिल्प और हथकरघा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 6 समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतान शिनावात्रा के बीच बैंकॉक में द्विपक्षीय वार्ता के बाद ये समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने पूर्वोत्तर भारत और थाईलैंड के बीच पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत आसियान एकता और आसियान केंद्रीयता का पूरा समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत और थाईलैंड स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत का समर्थन करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। लोकसभा ने कल रात विधेयक पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। इसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं। इससे संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित हो सकेगा। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का भी प्रयास किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हितधारकों के साथ साथ संयुक्त संसदीय समिति के साथ विस्तृत परामर्श के बाद विधेयक लाया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों से इस विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने विधेयक लाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को बधाई दी। और आइए अब चलते हैं राज्यसभा में, जहां वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा अभी जारी है।
कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, कौन किस तरह के मुसलमान के साथ खड़ा हुआ है। और सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सर ये पिछले, सर अपने कान पे बोलिए, सर पिछले 30-35 सालों से हुआ खड़ा किया जा रहा है। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, कहा गया बीजेपी आएगी उत्तर प्रदेश में खा जाएगी। सर बीजेपी आने के बाद उत्तर प्रदेश में जानते क्या हुआ? सर 22 साल से शिया सुन्नी के बीच में जो दंगे चलते थे और मदे साबा का जुलूस नहीं निकलता था, शिया समुदाय का मदे साबा का जुलूस लखनऊ में हमारी सरकार में निकलना शुरू हुआ। और उसके बाद कहा गया केंद्र में भाजपा आएगी तो खा जाएगी। सर अटल जी की सरकार आई, इतनी शानदार स्थिति रही। उसके बाद कहा गया गुजरात में आएगी तो भाजपा खा जाएगी। सर गुजरात का मुसलमान आज सबसे समृद्ध मुसलमान है, सबसे ज्यादा जकात वहां से आता है। उसके बाद कहा गया मोदी जी की सरकार आएगी तो क्या होगा। सर मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे साथियों ने बताया है अल्पसंख्यक समुदाय के 70% लोग हैं जिनको किसी न किसी एक योजना का लाभ जरूर मिला है। और सर फिर कहा गया सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी। सर उसके बाद भी आपने सब देखा, और सर हम बचपन में सुनते थे कि राम मंदिर बनने लगेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। सर राम मंदिर भी बन रहा है और भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी बन रहा है।
राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा में अभी आपने भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज थाईलैंड के बैंकॉक में थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा से मुलाकात की। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री शिनावात्रा के साथ अपनी मुलाकात को सुखद बताया। श्री मोदी ने कहा कि श्री शिनावात्रा को शासन और नीति निर्माण से संबंधित मामलों का व्यापक अनुभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्री शिनावात्रा भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं और अटल जी के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे। श्री मोदी ने आगे बताया कि उन्होंने और श्री शिनावात्रा ने भारत थाईलैंड सहयोग और इससे दोनों देशों के लोगों को किस तरह लाभ होगा इस बारे में विस्तार से चर्चा की। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में अपार संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। थाईलैंड सरकार ने श्री मोदी की यात्रा के अवसर पर 18वीं शताब्दी के रामायण भित्ति चित्रों को दर्शाते हुए एक विशेष डाक टिकट जारी किया। श्री मोदी को थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने पाली में बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक का एक विशेष संस्करण भी भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से लाए गए भगवान बुद्ध के अवशेषों को थाईलैंड भेजने की पेशकश की। लोकसभा ने तटीय नौवहन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारतीय समुद्री सीमा के भीतर व्यापार में लगे जहाजों को विनियमित करना है। विधेयक में तटीय जल का अर्थ है भारत का प्रादेशिक और आसपास के समुद्री क्षेत्रों का जल। कोलकाता की ईडन गार्डन्स में केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी तरह से हरा दिया है। इस हार के लिए टीम के 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।